नमस्कार भारत, तारीख 12 नवंबर, दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम का खाका खींचने में व्यस्त। उधर उनके विरोध में कई शहरों में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी।
I'm here to dispute his ideas. I think that his kind of speech of hate speech is.
यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने ट्रंप की वजह से अमेरिका व यूरोप के रिश्तों में खटास आने की दी चेतावनी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर लगे आरोप कि उसके नेताओं को 500,000 के नोट बंद करने के फैसले की जानकारी पहले से थी।
1 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया गया उसी दिन जिस दिन के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 500,000 के नोट डिमोनेटाइज कर दिए जाएंगे और उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी ने किया खंडन। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता के हस्तांतरण के लिए अपनी टीम का गठन कर लिया है, जिसका प्रमुख उन्होंने निर्वाचित उपराष्ट्रपति माइक पेंस को बनाया है। उन्होंने अपने बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप और अपनी बेटी इवांका को भी टीम में जगह दी है। इस बीच ट्रंप ने मरीजों के हितों के लिए बनाई गई सरकारी बीमा योजना ओबामा केयर के बारे में कहा है कि वे इसके कुछ प्रावधानों को बनाए रखेंगे। ट्रंप की ये बात चुनाव प्रचार के दौरान किए गए उनके एक वादे से उलट है, जिसमें उन्होंने ओबामा केयर की आलोचना की थी और कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो इस योजना को बंद कर देंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। दूसरी ओर यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जियां क्लोड यूंकर ने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में खटास आ सकती है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आने से अमेरिका और यूरोप जैसे दो बेहद अहम महाद्वीपों के रिश्तों की बुनियाद कमज़ोर पड़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट ने मूसल और उसके आसपास के इलाकों में लोगों के साथ भयानक क्रूरता बरती है और खून खराबा किया है। संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया कि उसके पास इस्लामिक स्टेट की बर्बरता के सबूत हैं। इराकी फौजें मूसल पर कब्जे के नज़दीक पहुंच चुकी हैं और इस्लामिक स्टेट वहां कमज़ोर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हताशा में इस्लामिक स्टेट ये कार्रवाई कर रहा है। जेनेवा में यूएन मानवाधिकार आयोग की प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने कहा कि आईएस ने गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर कई आम नागरिकों की हत्या कर दी है। शमदासानी ने कहा,
Just over the past few days, reports have emerged that ISIL appears to be continuing to carry out...
पिछले कुछ दिनों की रिपोर्ट के आधार पर यह बात सामने आई है कि इस्लामिक स्टेट लोगों पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उन्हें खुद की ही बनाई अदालतों में मौत की सजा सुना रहा है। मंगलवार को मूसल और उसके आसपास आईएस ने 40 आम नागरिकों को इराकी फौजों तक सूचनाएं पहुंचाने के आरोप में मार डाला, फिर उनकी लाशों पर गद्दार लिखकर उन्हें बिजली के खंभों से नुमाइश के लिए टांग दिया। ये थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की प्रवक्ता रवीना शमदासानी। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि बुधवार शाम को भी मूसल के एक सैन्य अड्डे पर 20 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मशहूर अमरीकी कलाकार रॉबर्ट वॉन का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो ल्यूकेमिया से पीड़ित थे। टीवी सीरीज द मैन फ्रॉम अंकल से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया था। बाद में उन्होंने फिल्मों के लिए भी काम किया। संयुक्त राष्ट्र के विशेष सलाहकार एडामा जिंग ने आशंका व्यक्त की है कि साउथ सूडान में चली आ रही नस्लीय हिंसा की वजह से वहां जनसंहार का खतरा पैदा हो गया है। बीबीसी समाचार।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में। आज मैं हूं आपके साथ मोहनलाल शर्मा। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने की प्रक्रिया के लिए निर्वाचित उपराष्ट्रपति माइक पेंस की अध्यक्षता में उन्होंने अपनी एक टीम का गठन किया है। इस टीम में उन्होंने अपने बेटों और बेटी को भी शामिल किया है। लेकिन अब जबकि ट्रंप अपनी भविष्य की योजनाओं का खाका खींचने में व्यस्त हैं, तो दूसरी ओर उनके खिलाफ अमरीका के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी है। ओरेगन के साथ साथ पोर्टलैंड में भी हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। ट्रंप ने पहले तो प्रदर्शनकारियों को पेशेवर प्रदर्शनकारी करार दिया, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें ये देखकर अच्छा लगा कि प्रदर्शनकारियों में इस महान देश के लिए जज्बा है। हम सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे और गर्व महसूस करेंगे। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
राष्ट्रपति चुनावों में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के कई शहरों में लगातार तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन स्थित डोनाल्ड ट्रंप के घर ट्रंप टावर के पास तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के खिलाफ नारे लगाते हुए इन प्रदर्शनकारियों में अधिकतर युवा हैं, जो हाथों में ट्रंप विरोधी नारे लिखे पोस्टर और बैनर भी थामे हुए हैं। इनमें अधिकतर हिलरी क्लिंटन के हिमायती हैं और उनका कहना है कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है। एक प्रदर्शनकारी जैस्पर, जो ट्रंप विरोधी नारे लिखे हुए पोस्टर थामे थे, कहते हैं,
I'm here to dispute his ideas. I think that his kind of speech of hate speech.
मैं तो डोनाल्ड ट्रंप के विचारों का विरोध करने आया हूँ, और वो जो नफरत भरे विचार पिछले 1.5 साल से व्यक्त करते रहे हैं, तो ऐसे विचारों वाले व्यक्ति को हम देश कैसे चलाने दे सकते हैं। ये थे एक प्रदर्शनकारी के शब्द। न्यूयॉर्क के साथ साथ कई अन्य शहरों जैसे लॉस एंजलिस, शिकागो, फिलाडेल्फिया, ऑस्टिन, पोर्टलैंड आदि शहरों में भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ट्रंप के विरोध में ओरेगन शहर पोर्टलैंड में गुरुवार की रात हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जहां हजारों प्रदर्शनकारियों ने दुकानों और वाहनों के शीशे तोड़ डाले। पोर्टलैंड में हिंसा के बाद पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को दंगों का नाम दे दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में अधिकतर शहरों में अब तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो एक ट्वीट करके प्रदर्शनकारियों को पेशेवर प्रदर्शनकारी करार दिया और कहा कि मीडिया ने उन्हें भड़काया है। ट्रंप ने ट्वीट में कहा कि प्रदर्शन बहुत अनुचित हैं, लेकिन चंद घंटों के बाद ट्रंप ने फिर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें ये देखकर अच्छा लगा कि प्रदर्शनकारियों में इस महान देश के लिए जज्बा है। उन्होंने आगे लिखा, हम सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे और गर्व करेंगे। न्यूयॉर्क स्थित डोनाल्ड ट्रंप के घर ट्रंप टावर को पुलिस और सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने कड़ी सुरक्षा में घेरा हुआ है। अब ट्रंप टावर के आसपास कई ब्लॉक तक सुरक्षा बैरियर लगा दिए गए हैं और टावर के 2 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के विमानों की उड़ान पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में प्रदर्शन सप्ताहांत में भी जारी रहेंगे और उनमें हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
उधर यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जियां क्लोड यूंकर ने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमरीका व यूरोप के रिश्तों में खटास आ सकती है। लग्जमबर्ग में छात्रों से उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताना होगा कि यूरोप क्या है और कैसे काम करता है।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
रुख भारत की खबर का करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 500 और 1000 के नोटों को अवैध घोषित किए जाने के बाद से ही पूरे देश में नकदी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एटीएम बैंकों में नोट हासिल करने के लिए मारामारी मची है। विपक्षी दल सरकार पर आधी अधूरी तैयारी के साथ उतरने की आलोचना कर रहे हैं। कल पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा से कुछ घंटे पहले बीजेपी की पश्चिम बंगाल शाखा के एक बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए नकद जमा कराए गए थे। इसका मतलब यह है कि उन्हें इस खबर की जानकारी पहले से ही थी। सीपीएम के मुखपत्र गणशक्ति में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह आरोप लगाते हुए कहा गया कि पार्टी के कुछ और खातों में भी इसी तरह की बड़ी नकद रकम जमा कराई गई। वरिष्ठ वकील और स्वराज अभियान के कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने भी 8 नवंबर के बीजेपी के उस अकाउंट स्टेटमेंट की एक प्रति ट्वीट करते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने प्रशांत भूषण से इस बारे में बात की।
वेस्ट बंगाल के एक अखबार में इसकी खबर निकली थी, फिर हमने पता लगाकर अपने स्वराज अभियान के साथियों से ये निकलवाया है। अपेरेंटली कोई वहाँ पर सीपीएम के किसी लीडर ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी दोपहर में कोलकाता में, जिसमें कि शायद ये स्टेटमेंट रिलीज किया गया था। स्टेटमेंट से ये जाहिर होता है कि इस बीजेपी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया गया जस्ट उसी दिन जिस दिन कि ये प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 500 और 1000 के नोट्स डीमोनेटाइज कर दिए जाएंगे और उसके बाद एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये दिखाता है कि जैसे कि बीजेपी के ऑफिस को या किसी को ये पता था कि इसके बाद ये 500 और 1000 के नोट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, अगर एक्सेप्ट भी किए जाएंगे तो उसकी स्क्रूटनी होगी वगैरह वगैरह, तो इस वजह से उस डेडलाइन के पहले इसको डिपॉजिट कर दिया गया। जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए 20,000 से ज़्यादा कैश में डोनेशन लेना इल्लीगल होता है, तो उनको ये दिखाना पड़ेगा, अभी भी कायदे से दिखाना पड़ेगा कि भाई ये इतने करोड़ रुपया कैश में डोनेशन उनके पास, ये इतना करोड़ रुपया कैश में कैसे आया, किसने ये पैसा दिया, और 1000 और 500 के नोटों में कैसे दिया, ये सब उनको दिखाना पड़ेगा। अब उनसे ये पूछताछ होनी चाहिए।
प्रशांत जी, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी लगातार बोलते रहे हैं, काम करते रहे हैं, तो आपकी क्या राय है जो मोदी सरकार का ये फैसला है 1000 और 500 के नोटों को बंद करने का, तो ये कितना कारगर रहेगा?
देखिए, करप्शन पर तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि करप्शन के लिए तो इन्होंने जो जो करना चाहिए था वो तो सारा खराब कर रहे हैं, ढीला करते जा रहे हैं। लोकपाल अपॉइंट नहीं किया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में 2 करप्ट लोगों को अपॉइंट कर दिया है, जिनका अपॉइंटमेंट हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ये खबर निकली है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को भी अमेंड किया जा रहा है, और सरकार की परमिशन जरूरी होगी किसी भी अधिकारी को प्रोसिक्यूट करने के लिए। जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, उस कानून को फिर से लाया जा रहा है, उसमें से क्रिमिनल मिसकंडक्ट का सेक्शन हटाया जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो करप्शन के खिलाफ लड़ाई तो इससे जरा भी इफेक्ट नहीं होगी।
स्वराज अभियान के एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी के पास नोट बंद करने के सरकार के कदम के बारे में कोई पूर्व सूचना नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये सूचना कुछ संवैधानिक व प्रशासनिक निकायों तक ही सीमित थी। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने काले धन को सफेद किए जाने के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि एक तो उन्हें इस तरह पैसा जमा किए जाने की जानकारी नहीं है, और अगर ऐसा किया भी गया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर गांव में, शहरों में 500 और 1000 के नोटों के अवैध हो जाने के बाद से ही बाजारों, बैंकों और एटीएम के बाहर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तो बाजार और जनता में फैली अफरा तफरी का असर कब तक रहेगा? हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने ये सवाल पूछा आर्थिक मामलों के जानकार डॉक्टर भरत झुनझुनवाला से।
मुझे लगता है कि इसका दो तरह का प्रभाव है। एक तो तत्कालिक जो 15 दिन 20 दिन का प्रभाव है वो तो सटी कर जाएगा, यानी लोगों के पास करेंसी फिर से आ जाएगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन इसका जो दीर्घकालीन इम्पैक्ट है वो ज्यादा मेरे लिए कष्टप्रद है, क्योंकि इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर आप ब्लैक मनी खत्म कर देंगे तो जो छोटे उद्योग हैं जो कि कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ेगा, और छोटे उद्योगों के लिए जीवित रहना बहुत कठिन हो जाएगा, और उसका सामाजिक दुष्प्रभाव बहुत पड़ेगा। देश में रोजगार सृजन की गति बहुत धीमी हो रही है, और ये उसके अंदर जैसे नेल इन द कॉफिन बोलते हैं, उसको एक और नीचे स्तर पर पहुंचा देगा।
सर, आपने इसमें शब्द इस्तेमाल किया ब्लैक मनी, ये आप ब्लैक मनी बोल रहे हैं?
ब्लैक मनी या कैश? कैश देखिए, जो छोटा उद्यमी होता है उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैश ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए वही व्हाइट है वही ब्लैक है। मान लीजिए कि कोई आदमी अपने घर में मोमबत्ती बना रहा है या कागज के लिफाफे बना रहा है, तो न तो उसको कोई जरूरत है, कोई उसके लिए टैक्स का रजिस्ट्रेशन कोई जरूरी है, और न उसके लिए कोई उसमें वायलेशन है, तो वो कैश ट्रांजैक्शंस पे है। और वो जो कैश ट्रांजैक्शन का जो पूरा सिस्टम है, मोदी जी चाहते हैं कि उसको वो प्लास्टिक मनी या बैंक ट्रांजैक्शंस में ले आए। अब अगर कागज का लिफाफा बनाने वाला जब कागज को चेक से या प्लास्टिक मनी से खरीदेगा तो उस पर टैक्स पे करेगा, और इसलिए वो ब्लैक मनी हो जाता है। कैश ट्रांजैक्शन और ब्लैक मनी का एक गठजोड़ है, इस प्रकार से आप समझ सकते।
एक तो ये तो रही बात जो रोजमर्रा की जो बाजार में जो असर है इसका, उसके अलावा अगर हम शेयर बाजार की तरफ जाएं तो जो शेयर बाजार है इसमें इसका कितनी दिनों तक या कितना लंबा असर रहेगा?
नहीं, शेयर बाजार में मैं मानता हूं कि इसका असर ज्यादा रहेगा। आप इसको समझिए कि जब आप कैश ट्रांजैक्शन से बैंक ट्रांजैक्शन पर जाते हैं और उस पर टैक्स आरोपित करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, और उसका इकोनॉमी पर जो असर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो उत्पादक हैं या अनुत्पादक। अब अभी तक जो स्टॉक मार्केट का मेरे दृष्टि से असेसमेंट है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार पे नियंत्रण कर रही है, सुशासन ला रही है, लेकिन अभी आप देखें कि फिच ने और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया को अपग्रेड करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत की पब्लिक फाइनेंस की सिचुएशन, सरकारी खर्चे की सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो ये जो अगर सरकार के खर्च की गुणवत्ता खराब है और उस परिस्थिति में आप राजस्व की वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब आप देश के खर्च को घटिया गुणवत्ता की ओर ले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो छोटे उद्योगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और जो सरकारी खर्च की गुणवत्ता है उसके कारण ये नेगेटिव इम्पैक्ट है और ये बढ़ेगा, यानी कि इकोनॉमी और टूटेगी। मेरे हिसाब से जो ये नोटों का निरस्त्रीकरण हुआ है इसको मैं काफी नेगेटिवली देखता हूँ। इस दृष्टि
बड़े नोटों के बंद होने के असर का विश्लेषण कर रहे थे डॉक्टर भरत झुनझुनवाला। और अब कार्यक्रम में आपको बताते हैं आज क्या है बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा का विषय।
बीबीसी इंडिया बोल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 500 और 1000 रुपए के नोटों पर लगाई रोक। विपक्षी पार्टियों ने की सरकार के कदम की आलोचना, लेकिन क्या केवल इस कदम से काले धन को समाप्त करने में लगेगी लगाम? इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय? शनिवार यानी 12 नवंबर को इसी मुद्दे पर होगी इंडिया बोल में बहस। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बस्तर में एक आदिवासी की हत्या के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और जेएनयू की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद समेत 4 लोगों की 15 नवंबर तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। नंदिनी सुंदर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 नवंबर तक राज्य व केंद्र सरकार से इस मामले में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इधर नंदिनी सुंदर ने आरोप लगाया है कि पुलिस फर्जी तरीके से उन्हें फंसा रही है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
शुक्रवार का दिन दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और जेएनयू के प्रोफेसर अर्चना प्रसाद के लिए राहत भरा था। पिछले सप्ताह बस्तर के नामा गांव में संदिग्ध माओवादियों ने सामनाथ बघेल की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने नंदिनी सुंदर और अर्चना प्रसाद समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। शुक्रवार को नंदिनी सुंदर की याचिका पर सुनवाई के दौरान असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 15 नवंबर तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। 2 दिन पहले ही बस्तर के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी ने दावा किया था कि नंदिनी सुंदर और अर्चना प्रसाद का हवाला देकर माओवादियों ने सामनाथ बघेल की हत्या की वारदात को अंजाम दिया।
सामनाथ बघेल को कहा गया है कि तुम इन लोगों को कहने के बावजूद, जो दल आके बाहर से आपको समझा है, इसके बावजूद आप माओवादियों का खिलाफत कर रहे हो और सरकार शासन प्रशासन कानून का साथ दे रहे हो करके उनको जन अदालत में खींचते हुए ले जा रहे थे। विरोध दर्ज करने पर सामनाथ बघेल को उनके परिवार के सामने हत्या कर दिया।
लेकिन पुलिस के दावे के उलट शुक्रवार को मृतक सामनाथ बघेल की पत्नी ने बस्तर में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि उन्होंने किसी के नाम से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है और न ही पति की हत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति को वो पहचानती हैं। गांव के दूसरे लोगों ने भी नंदिनी सुंदर और उनके साथियों द्वारा ग्रामीणों को पुलिस के खिलाफ भड़काए जाने संबंधी पुलिस के दावे को गलत बताया है। हमने इस पूरे मामले पर प्रोफेसर नंदिनी सुंदर से भी विस्तार से बातचीत की। उनका कहना है कि पुलिस ने फर्जी तरीके से पूरा मामला दर्ज किया है।
हमारे खिलाफ जो FIR दर्ज हुआ है वो बिल्कुल गैर कानूनी और नाजायज है। ये सीधा साधा इसका रिश्ता CBI के चार्जशीट से है जो मिस्टर SRP कलूरी के खिलाफ जा रहा है। लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार, खासतौर पर मिस्टर SRP कलूरी, डरे हुए हैं, क्योंकि CBI के चार्जशीट ने साफ बताया है कि पुलिस के द्वारा ही ताडमेटलिया के ऊपर जो हमला हुआ था 2011 में, जिसमें 300 घर जले थे, उसमें पुलिस का हाथ था।
नंदिनी सुंदर का कहना है कि बस्तर पुलिस जिस तरीके से काम करती रही है यह मुकदमा उसकी ही एक कड़ी है।
छत्तीसगढ़ सरकार बहुत लंबे अरसे पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं के ऊपर हमले करते आ रहे हैं, ये इसमें सिर्फ एक और कड़ी है।
नंदिनी सुंदर का कहना था कि छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर से संबंधित मामलों में जिस तरीके से एक के बाद एक मुकदमे हारती जा रही है, इस मुकदमे का भी हश्र ऐसा ही होगा। छत्तीसगढ़ सरकार मंगलवार को हत्या के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश करेगी और उस दिन तय होगा कि नंदिनी सुंदर और अर्चना प्रसाद समेत दूसरे लोगों की गिरफ्तारी पर लगी रोक बरकरार रहती है या छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें न्यायिक हिरासत में लेती है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान दौरे में भारत व जापान दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु ऊर्जा को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को ऐतिहासिक महत्व का बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी रोहित जोशी ने वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला से बात की और पूछा इस समझौते का महत्व क्या है।
कई सालों से इसका नेगोशिएशन चल रहा था जापान के साथ, लेकिन जापान कुछ अश्योरेंसेस चाहता था भारतवर्ष से, जो कि भारत को परेशानी हो रही थी देने में, क्योंकि जापान चाहता है कि जो भी उनके संग न्यूक्लियर ट्रेड करे वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी हो, और हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को रिजेक्ट किया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो अमेरिका से न्यूक्लियर रिएक्टर आने हैं और जो फ्रांस से न्यूक्लियर रिएक्टर आने हैं, उन सब के लिए दरवाजे और आसानी से खुल पाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अमेरिका की कंपनी है वेस्टिंग हाउस, उसका समझौता है तोशिबा से, जो कि एक जापानी कंपनी है। उसी तरह से जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है वो भी न्यूक्लियर रिएक्टर सप्लाई करना चाहती है, उनकी भी हिताची कंपनी से जापान में लेन देन है, और फ्रांस की कंपनी अरेवा जो है, जो कि सापुर में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना चाहती है, वो भी अपने न्यूक्लियर वेसल को जापान से ही बना के इम्पोर्ट करना चाहती थी। तो आने वाले टाइम में इससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में इम्पोर्टेड न्यूक्लियर रिएक्टर लगने में कुछ ना कुछ और आसानी हो जाएगी।
वरिष्ठ विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला और भारत व जापान ने असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रभात पांडे, अखबार क्या कह रहे हैं आज के?
जी मोहन लाल जी, भारत और जापान के बीच जो परमाणु समझौता हुआ है वो लगभग तकरीबन हर अखबार ने अपने पहले पन्ने पर उसको जगह दी है। इसके अलावा वो जो तीन दिन से चला आ रहा है कि पुराने नोट बदलवाने को लेकर बैंकों में जो भारी भीड़ है और ATM काम ना करने की शिकायत है, उसको भी अखबारों ने पहले पन्ने पर छापा है।
यहीं पर मैं एक जनसत्ता का कार्टून बड़ा अच्छा लग रहा है। सोनिया गांधी जो है वो राहुल से बात कर रही हैं और राहुल जो है वो पैसे जमा कराने के लिए बैंक पहुंचे थे। चांस की बात है, इसी बहाने तुमने थाना और बैंक भी देख लिए। अच्छा। सोनिया गांधी राहुल से कह रहे हैं।
राहुल से कह रहे हैं जी। और द इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक देश भर के लगभग 60% ATM काम नहीं कर रहे हैं, और अखबार कहता है कि ऐसा लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छे से तैयारी नहीं की थी और बिना तैयारी के वो उतर पड़े हैं मैदान पे। मोहनलाल जी, आप भी ATM से कल आपने पैसे निकाले थे, आपका क्या अनुभव?
सफलतापूर्वक 2000 रुपए कैश निकालने में मैं सक्सेसफुल रहा, और जैसे ही मैंने कार्यक्रम खत्म किया मैं भाग के दौड़ के ATM गया और 2000 रुपए निकाल।
जी, आपके चेहरे पे विजयी मुस्कान नजर आ रही है। इसके अलावा मोहनलाल जी, द हिंदू ने पहले पन्ने पर खबर छापी है कि अफवाह से बढ़ी नमक की कीमतों ने लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का। अखबार कहता है कि पुरानी दिल्ली में नमक की कमी हो गई, ऐसी अफवाह फैल गई जिसकी वजह से शुक्रवार शाम तक नमक 250 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया। इनके अलावा अमर उजाला ने खबर छापी है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काटजू के प्रति जो अवमानना का नोटिस जारी हुआ, तो उस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जस्टिस काटजू को अदालत से बाहर जाने के लिए कह दिया। इसके अलावा अमर उजाला ने कहा है कि सलमान के सामने फिर खड़ा हुआ चिंकारा, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। और एक और खबर मैं जल्दी से बताना चाहूँगा कि टेनिस स्टार मारिया शारापोवा पर जो नशीले पदार्थ लेने की वजह से प्रतिबंध लगा था वो हट गया है, जिसकी वजह से अब वो फिर से संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना दूत बन सकेंगी। जी मोहनलाल जी,
तो बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर अपने श्रोताओं को एक जानकारी दे दूँ कि पुराने नोट के इस्तेमाल की अवधि 72 घंटे के लिए बढ़ी है। ये खबर लगभग हर अखबारों में है और खासकर सार्वजनिक सुविधाओं के बिलों के भुगतान के लिए, यानी कि 500 और 1000 के नोट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कार्यक्रम में अब बात करते हैं कल जो फिल्म रिलीज हुई है उसके बारे में, और ये फिल्म है Rock On 2।
अर्नब, कैसी लगी आपको Rock On 2?
Rock On 2 एक सीक्वल है, और एक सीक्वल बनाने के लिए एक बहुत मजबूत एक रीजन होना चाहिए, यानी एक कारण होना चाहिए कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। उस हिसाब से Rock On 2 में कोई वजह नहीं थी जबरदस्ती बनाने की।
फरहान अख्तर का एक्टिंग डेब्यू रॉक ऑन से हुआ था, 8 साल बाद ये फिल्म आई है Rock On 2। कैसे अलग लगे आपको फरहान?
फरहान अख्तर तो बहुत कुछ करते हैं, सभी कुछ करते हैं, वो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और गाना भी गाते हैं। मुझे लगता है वो गाना छोड़ के और बाकी काम करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि गाने की उनकी आवाज नहीं है।
तो और बातें करेंगे।
बाकी लोगों की बात करते हैं एक एक लाइन में। अर्जुन,
अर्जुन का बहुत मजबूत रोल है इसमें और बहुत उन्होंने कोशिश भी करी है, लेकिन जब भी अर्जुन रामपाल कोशिश करते हैं वो कोशिश दिखाई देने लगती है, यानी एज एन एक्टर वो बहुत सहज नहीं है, वो कहीं ना कहीं खटकता है।
श्रद्धा,
श्रद्धा एक नया एडिशन है और श्रद्धा को यहाँ एक्टिंग दिखाने का मौका भी मिला है, लेकिन क्योंकि वीक स्क्रिप्ट थी और बहुत रेपिटेटिव है, जो पहले हम देख चुके हैं पहले हाफ में या पहले फिल्म में, वही इसमें भी वही मजबूरियां दिखाई हैं, वही बैंड में आपस में झगड़े दिखाए हैं, तो उस हिसाब से उसको करने के लिए कुछ नहीं है नया।
शुजात सौदागर, ये एज अ डायरेक्टर क्या जस्टिस कर पाए हैं अपने इस काम से? इन्होंने रॉक ऑन 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए थी या उनको लेनी भी चाहिए थी, क्योंकि पहली जो फिल्म थी वो इतनी मजबूत थी, उसके गाने अभी तक लोग गाते हैं, इसमें वो गाने भी रखे गए हैं एक आध, और उसमें कुछ नयापन था। ये रॉक आर्टिस्ट यहाँ पे कितने भी कम हो, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो रॉक आर्टिस्ट के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, वो पहली फिल्म में ये दिखाया गया था। अब सेकेंड फिल्म क्योंकि रेपिटेटिव है और कोई भी ऐसा कोई तार नहीं है फिल्म में जो आप ऑडियंस के साथ जोड़ सके, ऑडियंस को लगता है ये तो हमने देखा हुआ है पहले से।
फाइनली, कितने स्टार्स दोगे आप रॉक ऑन 2 को?
मैं रॉक ऑन 2 को 2 ही स्टार्स दूंगा।
फिल्म रॉक ऑन 2 की समीक्षा कर रहे थे फिल्म समीक्षक अर्णब बनर्जी और उनसे बात कर रहे थे वैभव दीवान। कार्यक्रम में अब खबरें खेल से।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। राजकोट टेस्ट का आज चौथा दिन है। तीसरे दिन दो भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और मुरली विजय का जलवा रहा। दोनों ने शतकीय पारी खेलने के अलावा दूसरे विकेट के लिए 209 रन जोड़े। राजकोट के घरेलू खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने जहां 124 रन बनाए, वहीं मुरली विजय ने 126 रन की पारी खेली। पुजारा का ये 9वां और मुरली विजय का 7वां टेस्ट शतक रहा। दोनों भारत के लिए 2000 से ज्यादा टेस्ट रनों की साझेदारी कर चुके हैं। इस साझेदारी के पीछे पुजारा बेहतर कम्युनिकेशन मानते हैं।
आई थिंक इट्स द कम्युनिकेशन, बोथ ऑफ अस हैज बीन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम।
हम दोनों के बीच अच्छा कम्युनिकेशन है। हम दोनों ही काफी वक्त से भारत के लिए खास तौर से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। इस फॉर्मेट के बारे में हम मैदान के बाहर भी बात करते रहते हैं। कई बार जब आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हों तो आपको क्वालिटी प्रैक्टिस नहीं मिल पाती, इसीलिए हमने घरेलू क्रिकेट खेला और NCA में भी अच्छी ट्रेनिंग की।
दिन का खेल खत्म होने पर भारतीय कप्तान विराट कोहली 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तीसरे दिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दिन के दूसरे ही ओवर में गौतम गंभीर 29 के निजी स्कोर पर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद भारतीय पारी को पुजारा और विजय की जोड़ी ने संभाला। पुजारा का विकेट 52वें ओवर में गिरा, उन्हें बेन स्टोक्स ने एलिस्टर कुक के हाथों कैच आउट कराया। विजय का विकेट अदिल राशिद ने लिया। नाइट वॉचमैन अमित मिश्रा के रूप में भारत का 4वां विकेट अंत में गिरा। जफर अंसारी ने मिश्रा को खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। पहली पारी में भारतीय टीम अब भी 218 रन से पीछे है और उसके 6 विकेट बाकी हैं। और वहीं हॉकी में भारतीय पुरुष टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की खिताबी जीत के बाद अब ऑस्ट्रेलिया खेलने जाने वाली है। भारतीय टीम वहां 4 देशों की हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी जो 23 नवंबर से खेला जाएगा। इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की कमान VR रघुनाथ के हाथों में दी गई है, जबकि टीम के वाइस कैप्टन के रूप में रुपिंदर पाल सिंह को नियुक्त किया गया है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचार आपने सुन लिया और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता के हस्तांतरण के लिए अपनी टीम का गठन किया है, जिसका प्रमुख निर्वाचित उपराष्ट्रपति माइक पेंस को बनाया है। उन्होंने अपने बेटों डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप और अपनी बेटी इवांका को भी टीम में जगह दी है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जियां क्लॉड यूंकर ने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में खटास आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट ने मूसल और उसके आसपास के इलाकों में 40 आम नागरिकों की हत्या करके उनके शव को बिजली के खम्भों से लटका दिया। मशहूर अमरीकी कलाकार रॉबर्ट वॉन का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो ल्यूकेमिया से पीड़ित थे। टीवी सीरीज द मैन फ्रॉम अंकल से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया। संयुक्त राष्ट्र के विशेष सलाहकार एडामा जिंग ने आशंका व्यक्त की है कि साउथ सूडान में चली आ रही नस्लीय हिंसा की वजह से वहां जनसंहार का खतरा पैदा हो गया है। साउथ सूडान पिछले 3 सालों से गृह युद्ध जैसी स्थिति झेल रहा है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। घंटे भर बाद विश्व भारती कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, तब तक नमस्कार।